ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देशभर में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने विजयघाट स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर में नई दिल्ली में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम स्वच्छता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने को दर्शाएगा। प्रधानमंत्री 9600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें अमृत और अमृत 2 के अंतर्गत परियोजनाएं, गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन और 15 कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों का धन्यवाद दिया जिन्होंने स्वच्छ भारत आंदोलन को सफल बनाने में काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र स्वच्छ भारत के 10 वर्ष पूरे कर रहा है, जो भारत को स्वच्छ और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने में एक सामूहिक प्रयास है। प्रधानमंत्री आज झारखंड के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में 79,150 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 40 एकलव्य स्कूलों का लोकार्पण करेंगे और 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर के तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव में लगभग 70% मतदान दर्ज हुआ। उधमपुर जिले में सबसे अधिक 76% मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 3 चरणों में हुआ सफल मतदान इस क्षेत्र में नई सुबह को दर्शाता है। इधर हरियाणा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार में कोसी नदी में आए भीषण बाढ़ से राज्य के 16 जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 48 घंटों में राज्य के सीमांचल और पूर्वी हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन डीसी में अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने हाल ही में अमरीका के डेलावेयर में हुई क्वाड और बैठक और द्विपक्षीय वार्ता में उठाए गए मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में आपसी सहयोग, पश्चिम एशिया की स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप की हाल की घटनाओं, हिंद प्रशांत और यूक्रेन के बारे में भी विचार किया गया। श्री जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी एशिया में संघर्ष बढ़ने को लेकर भारत बहुत अधिक चिंतित है। अमरीका में कार्नेजी एडोमेंट में एक बातचीत के दौरान डॉ जयशंकर ने इसराइल पर पिछले वर्ष 7 अक्टूबर के हमले को आतंकी हमला बताया। ईरान ने कल रात इसराइल पर सीधे हमले करते हुए करीब 200 मिसाइलें दागी। ईरान के इस हमले से लोग बचाव स्थलों पर चले गए हैं और क्षेत्र में चौतरफा युद्ध की आशंका बढ़ गई है। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि कल रात के हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है और इसराइल के हवाई क्षेत्र में नए हमलों का कोई संकेत नहीं मिला है। पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को सलाह दे रखा है कि वो सतर्क रहें और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करें। दूतावास ने उनसे अनुरोध किया है कि वो सावधान रहें और देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।